हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नव्यांशी की फ्लाइट थोड़ी डिले हो जाने की वजह से वो रात के करीब 11 बजे दिल्ली पहुंची थी। जल्दबाजी में अपना काम उदयपुर में खत्म करने और यहां आने के चक्कर में नव्यांशी ने ठीक से तैयारी भी नहीं की थी, यहां तक कि उसने होटल भी बुक नहीं करवा रखा था। नव्यांशी अपना लगेज घसीटते हुए चेकिंग एरिया से बाहर आ रही थी। थकान की वजह से उसके चेहरे पर चिढ़न के भाव थे, ऊपर से उसकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। मैं एक दो दिन रुककर भी तो आ सकती थी, लेकिन नहीं, भाई भी कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पता नहीं उन्होंने शिवांशा भाभी को क्या सजा दी होगी, उनसे तो बात भी करने का मौका नहीं मिला। अजीब बात है, भाभी के पास खुद का पर्सनल सेलफोन भी नहीं है। अगर उनका मोबाइल राजावत फैमिली के यहां रह गया था तो भाई कम से कम उन्हें एक फोन तो गिफ्ट कर ही सकते थे। फिलहाल के लिए मुझे भाई और भाभी को छोड़कर खुद के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, ऊपर से नींद भी आ रही है। बस अब टैक्सी मिल जाए और फिर मुझे वो किसी अच्छे होटल में पहुंचा दे, उसके बाद कल सोचूंगी आगे क्या करना है। नव्यांशी खुद में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। नव्यांशी बाहर आई और वहां खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। नव्यांशी को लगा कि गाड़ी के अंदर कोई आवारा लड़का है जो अकेली लड़की को देखकर परेशान करने की कोशिश कर रहा था। नव्यांशी ने गहरी सांस ली और तेज आवाज में कहा, चुपचाप निकलो यहां से वरना पुलिस बुला लूंगी। अकेली लड़की देखी नहीं और समाज सुधारक बनने आ जाते हो। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और वहां से अरमान बाहर निकला। नव्यांशी की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सिर हिलाकर कहा, चाहे तो बुला सकती हो, और हां, समाज सुधारक बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। मिस्टर चौहान का कॉल आया था और उन्होंने तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट करने के लिए बोला था। रात काफी हो गई थी तो सोचा कि खुद ही लेने चला जाऊं। इतनी रात को होटल में रुकना छोड़ो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। नो थैंक्स, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। साइड हटो, मैं टैक्सी लेकर खुद चली जाऊंगी, नव्यांशी ने काफी बेरुखी से कहा। यहां आने से पहले नव्यांशी ने अरमान को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। बस इसी वजह से नव्यांशी इतनी गुस्सा थी। वहीं इतने दिनों में अरमान ने नव्यांशी को इतना तो समझ ही लिया था। नव्यांशी वहां से जाने लगी तो अरमान उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। अच्छा ठीक है ना, नहीं रिसीव कर पाया कॉल, अब इसमें इतना गुस्सा करने जैसा क्या है? तुम भी बहुत बार अवेलेबल नहीं रहती हो, मैंने तो कभी तुम पर गुस्सा नहीं किया, तुम बहुत इमेच्योर हो, अरमान ने आइज रोल करके कहा। पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कभी कॉल किया हो, अब तो ऐसा लगता है कि मैं ही तुम्हें बार बार बात करने के लिए परेशान करती हूँ। आगे से ऐसी परेशानी नहीं होगी मिस्टर राजावत, और आपको मेरी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, नव्यांशी ने काफी रूडली जवाब दिया। नव्यांशी अपना सामान लेकर वहां से जाने लगी, तभी अरमान धीरे से बड़बड़ाकर बोला, सच में बहुत जिद्दी है, इसे समझाना बेकार है, ऊपर से ये मेरी बात तो कभी नहीं सुनने वाली, लगता है उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अरमान ने गहरी सांस ली और कार की विंडो का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से मनन बाहर निकला। वो बिल्कुल किसी कूल ड्यूड की तरह तैयार हुआ था। लूज रॉकस्टार जैसी हुडी, आंखों पर ब्रांडेड गॉगल्स और स्टाइलिश कैप लगाए मनन पूरे एटीट्यूड से गाड़ी से बाहर निकला। मैंने कहा था ना अरमान, वो खूबसूरत चुड़ैल तुमसे नहीं हैंडल होने वाली, ऐसी लड़कियों को मेरे जैसा बैड बॉय ही हैंडल कर सकता है, मनन ने सिर हिलाकर कहा, जिस पर अरमान ने गहरी सांस लेकर उसे नव्यांशी के पास जाने का इशारा किया। नव्यांशी भले ही अरमान से कितनी भी गुस्सा हो, लेकिन अरमान को इतनी रात को वहां देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। वो धीरे धीरे चलकर आगे जा रही थी, ये सोचकर कि अरमान उसे मनाने के लिए वापस आएगा। वहीं मनन दौड़कर गया और नव्यांशी के आगे अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया था। उसने नव्यांशी को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं और अरमान इतनी रात को तुम्हारे लिए अपना काम छोड़कर यहां आए हैं, और तुम हमारे साथ जाने के बजाय एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर अब तुम हमारे साथ नहीं आई तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जा सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, नव्यांशी ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। मनन जो अब तक कूल ड्यूड बनने की एक्टिंग कर रहा था, नव्यांशी के मना करने पर उसका मुंह बन गया था। उसने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, अरमान ने कहा कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अपने अरमान से कहो कि मैं अच्छी बच्ची नहीं हूं, नव्यांशी ने जवाब दिया। नव्यांशी और मनन की बहस में अरमान बीच में आया और बोला, अच्छा बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, कुछ ज्यादा ही टैंट्रम्स नहीं दिखा रही तुम। बस एक छोटा सा प्रॉमिस कि आगे से तुम मेरा कॉल कभी इग्नोर नहीं करोगे, नव्यांशी बोली और उसने अपना हाथ अरमान के सामने कर दिया था। अरमान कोई भी प्रॉमिस करने से पहले सोच रहा था, तभी मनन ने हाथ को जबरदस्ती पकड़कर उसे नव्यांशी के हाथ पर रखते हुए कहा, मान जाओ ना अरमान, इसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और घर पर चैंप अकेला भी है। अरमान ने पलके झपटाकर उसकी बात पर हामी भरी। उसने एक नजर नव्यांशी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी। अरमान ने तुरंत अपना हाथ नव्यांशी के हाथ से अलग कर दिया था। उसने नव्यांशी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा हो गया है तो चलते हैं,
कहने को मनन बच्चों जैसी हरकतें करता है, लेकिन तुम भी उससे कम नहीं हो। पता नहीं ये प्रॉमिस लेना कहाँ से सीखते हैं लोग। नव्यांशी को झिड़कने के बाद अरमान उन्हें वहीं पर छोड़कर आगे चलने लगा। उसके कान हल्के लाल हो रहे थे और वो अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को सहला रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले नव्यांशी के हाथ पर रखा था। वहीं नव्यांशी के चेहरे पर भी स्माइल थी। वो मनन के साथ पूरी शान से चलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। नव्यांशी कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी जबकि अरमान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मनन उसके पास में था। ड्राइव करते हुए अरमान बीच बीच में नव्यांशी का चेहरा देख रहा था जो थकान की वजह से सीट पर लीन होकर आंखें बंद करके बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ वेद को आज भी ऑफिस से घर आने में देर हो गई थी। सुबह वेद ने शिवांशा को अपने फ्यूचर के बारे में सोचने और घर की कुछ जिम्मेदारियां संभालने की बात कही थी। रात के करीब 12 बजे जब वेद घर पहुंचा तब घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में गया तो उसने देखा शिवांशा अब तक उसका इंतजार कर रही थी, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुम अब तक जाग क्यों रही हो? टाइम देखा है क्या हुआ है? वेद ने शिवांशा को घूरते हुए पूछा। आपने तो कहा था कि मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए। ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन रानी ने मुझे बताया था कि अगर कभी वंश भैया लेट आते हैं तो आराध्या भाभी उनके आने का इंतजार करती हैं। आप फ्रेश होकर आ जाइए, चेंज कर लीजिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, शिवांशा ने जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर वेद के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। शिवांशा वहां से जाने को हुई तभी वेद ने सिर हिलाकर कहा, रुको, पागल समझाए तुमने मुझे। शिवांशा जल्दी से वेद की तरफ पलटी और उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। वेद ने भौहें उठाकर कहा, ये जो अच्छी वाइफ बनने की ट्रेनिंग ली जा रही है ये किसी काम नहीं आएगी, चुपचाप जाकर सो जाओ, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन, शिवांशा ने बोलना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद की निगाहें काफी थीं उसे चुप करवाने के लिए। बोला ना जाकर सो जाओ, सुबह भी क्लियर किया था, अभी भी कर रहा हूं, तुम जो चाहती हो वैसा कुछ नहीं हो सकता है। बेहतर होगा स्टडी कंप्लीट करो, फ्यूचर बनाओ और एक अच्छा लड़का देखकर उससे शादी करो, ये सब सपने उसके साथ देखना। वेद ने इस बार काफी सख्त शब्दों में शिवांशा को डांटा।
वेद के डांटने के बाद शिवांशा के कदम मानो वहीं पर रुक गए थे और आंखों में नमी उतर आई थी। शिवांशा ने धीमी कांपती आवाज में कहा, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे किसी और से नहीं करनी है। वेद की बात सुनकर शिवांशा हैरान रह गया। वो उसके पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिपीट योर वर्ड्स। मेरी शादी हो? शिवांशा अटकते हुए बोल रही थी। वैसे भी वेद की आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी कर पाना उसके लिए कहां संभव था। किसी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और तुम खुद जानती हो हमारी शादी नहीं हुई है। आखिर किस भ्रम में जी रही हो तुम? अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मैं सब कुछ फिर से दोबारा एक एक बात याद दिला देता हूँ। ठीक है, मैंने गलती की और तुम्हें सजा देने के चक्कर में सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ बता दिया था, पर सच क्या है तुम अच्छे से जानती हो, हमारी शादी नहीं हुई है शिवांशा, और ना ही हो सकती है, वेद ने उसे समझाते हुए शांत आवाज में कहा। वेद एक एक शब्द सोच समझकर बोल रहा था ताकि उसके शब्दों से शिवांशा का दिल ना दुखे और वो सच्चाई से भी रूबरू हो जाए। मुझे सब याद है, पर इसमें बुराई ही क्या है? आप मुझे इस वजह से छोड़ नहीं सकते हैं कि मेरी उम्र कम है। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? शिवांशा ने पूछा। वेद तुरंत दूसरी तरफ पलट गया था। शिवांशा को तो उसने कह दिया था कि आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोला जा सकता था, लेकिन अब वो खुद शिवांशा की जगह पर खड़ा था। हाँ, अगर उम्र की बात को इग्नोर किया जाए तो शिवांशा उसे भी अच्छी लगने लगी थी, और जब भी वो उसके पास होता तो उसे एक अलग ही एहसास होता था। वेद ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में प्यार जैसा लम्हा भी आएगा, ना ही वो इसके लिए तैयार था। वेद की दूसरी तरफ पलटते ही शिवांशा बोली, मुझे मेरा जवाब मिल गया है, आप जाकर चेंज कर लीजिए, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। आपने मुझे मेरे फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन लेने को कहा था, वो मैंने कर लिया है। जब आपकी हिम्मत मेरी तरफ देखकर सच बोलने की हो जाए उस वक्त मैं बता दूंगी कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ। शिवांशा वहां से जाने को हुई तभी पीछे से वेद ने तेज आवाज में कहा, कुछ ज्यादा ही ब्रेव नहीं हो गई हो तुम? शिवांशा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। आज उसे वेद से सच में डर नहीं लग रहा था। अगर वेद उसकी आंखों में देखकर ये कह देता कि वो उसे पसंद नहीं करता है तो शायद वो अपने कदम पीछे ले लेती या फिर इस मामले में बात नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वो दूसरी तरफ मुड़ा था और बात को टालने की कोशिश कर रहा था उससे शिवांशा को साफ हो गया था कि वेद के दिल में भी उसके लिए जज्बात पनपने लगे हैं। शिवांशा ने सिर हिलाया और सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा, हाँ, होना ही पड़ेगा। वेद सिंह चौहान जैसे डिसिप्लिन्ड और सख्त इंसान की वाइफ बनना आसान कहाँ होने वाला है। कम से कम अपनी बात कहने की हिम्मत तो मुझे रखनी ही होगी, वरना मैं डरती रही तो कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं। ऐसा कुछ भी मत कहना जो मैं अभी सुनने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, मुझे टाइम चाहिए, वेद ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा और तेज कदमों से चलते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गया था। वहीं शिवांशा को तो अपने कानों पर यकीन तक नहीं हो रहा था।
भले ही वेद ने हाँ नहीं कही हो, लेकिन उसने टाइम मांगा था। इसका मतलब शायद वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता हो। उम्मीद है आप हाँ ही कहेंगे, और वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होने वाला है, शिवांशा ने बेहद धीमी आवाज में कहा। उसके गाल लाल हो रहे थे इस उम्मीद के साथ कि फाइनली उसके इस अनजाने रिश्ते को नाम मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वेद बाथरूम में था। वो दीवार से सटकर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे और वेद के कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी। ठीक है, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपनी फैमिली के लिए शादी नहीं कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए उम्र भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो तुम्हें मेरा त्याग भी दिखाई देगा। वेद, हम दोनों का रिश्ता खुद तुम्हारे मम्मी पापा ने तय किया था। तुम भले ही आज उनके जाने के बाद मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दो, लेकिन मैं उसी दिन खुद को तुम्हारी पत्नी मान लिया था जिस दिन अंकल आंटी ने तुम्हारे नाम का तिलक मेरे माथे पर लगाया था और मुझे चौहान फैमिली कहा था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है, इतना आसान थोड़ी ना है शिवांशा और वेद का एक होना? कोई तीसरा इंसान भी है जो पहले से ही वेद का इंतजार कर रहा है। चलिए देखते हैं वेद को इस तीसरे इंसान का त्याग दिखाई देता है या फिर शिवांशा का प्यार। आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।